जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा नई दिल्ली में दिया गया।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना बालाभ राधारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 16। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीं पुनाति वक्तरं प्रचकं श्रोत्रं तत्पदा सलिलम यथा। परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव गोस्वामी से निवेदन किया था कि वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों की चर्चा करें, और परीक्षित महाराज ये भी कह चुके हैं कि क्योंकि मैं आपके कमल मुख से यह अमृत स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ना भूख महसूस हो रही है और ना प्यास। हालांकि उन्होंने पूरा व्रत रखा था और ये कथा वो सुन रहे थे 24 घंटे। तो शुक्रदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित के अनेक प्रश्नों को सुनकर, और उन्होंने कहा है ये दिव्य चर्चा ही इस कलयुग की समस्याओं का असली उपाय है। जैसे कि जब परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव गोस्वामी जी से पूछा कि ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि कलयुग में अनेक दोष हैं पर एक गुण है। क्या है वो एक गुण? कृष्णा का कीर्तन। तो उसी प्रकार शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कृष्णा कथा यही एक उपाय है कलयुग की प्रजा के लिए जो कि अनेक प्रकार के कष्ट भुगत रही है। तो कृष्णा कथा ही सबसे अवश्य विषय है, खास करके जो कि आध्यात्मिक जीवन निभाना चाहते हैं। तो शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि आपकी बुद्धि लगी है किसमें? आध्यात्मिक विषय में, और यह होना चाहिए हर मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य या उद्देश्य। आज हम देखते हैं कि लोगों की बुद्धि आध्यात्मिकता के अलावा हर जगह है। दूसरे शब्द में की बुद्धि जुड़ी हुई है बहुत एक कार्यों में। शुक्रदेव गोस्वामी जी स्थापित करते हैं इस अध्याय में कि जिस व्यक्ति की बुद्धि आध्यात्मिक विषय में लगी है या जुड़ी है, वही असली बुद्धिमान व्यक्ति है। तो असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। भौतिक स्थिति में हम अगर किसी कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, किसके पास बड़ी PhD डिग्री हो, तो हम कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, पर शुक्रदेव गोस्वामी जी के अनुसार वो है असली बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है आध्यात्मिक विषय के ऊपर। और ये जो है शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे आज के श्लोक में इसी विचार के ऊपर आगे कहा जा रहा है। आज के श्लोक में कि भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों ऊपरी मध्य तथा अधा लोकों को पवित्र बना देती है। तो गंगा जो है भगवान के चरणों के अंगूठे से निकली है, उसका एक और नाम भी है विष्णुपति, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों से निकली है। और गंगा के विषय में कहा गया है तीनों लोकों को पवित्र बना देती है। पापी व्यक्ति या भक्त जो भी गंगा का लाभ उठाए वो बाहर से और अंदर से दोनों ही से ही पवित्र बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं पांचवें स्कंद में कि कई लोगों की आदत है कि रोज गंगा में स्नान करना, तो अंदर से तो हृदय भी शुद्ध हो जाता है गंगा में स्नान करने से, और बाहर से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं गंगा में स्नान करने से। तो गंगा नदी जो है क्योंकि भगवान के चरणों के अंगूठे से निकली है, इसलिए ये सबको पवित्र बना देती है। और भागवतम के अनुसार ऊपरी मध्य तथा अध लोक हैं। आज आप देखते हो कि विज्ञानी बहुत प्रयास कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ऊपर के लोकों में जीवन है क्या है, पर ये सारा ज्ञान हमें शास्त्रों द्वारा प्राप्त होता है कि ऊपरी मध्य तथा अध लोक हैं। पर भागवत गीता में भगवान कहते हैं अभ्रमा भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन मम उपेति कौंत्य पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तुम ब्रह्मा लोक तक भी पहुंच जाओ तो वहां पहुंचकर भी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल छुटकारा मिलेगा कब, अगर तुम कहां होगे, मेरे धाम में आओगे। तो श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में हमें इस विषय पर बड़े गहराई से ज्ञान मिलता है किस किस प्रकार अनेक लोक हैं और कैसे व्यक्ति इन लोकों में पहुंच भी सकता है। कोई 50 साल पूर्व सबसे पहला स्पुटनिक एक गया था स्पेस में 1952 में, और रशिया ने भेजा था गार्गेरिन आई थिंक। तो कई सोच रहे थे कि ये संभव हो जाएगा जाना, पर प्रभुपाद जी ने उस समय एक ग्रंथ छापा था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो उस ग्रंथ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भावना है दूसरे लोकों में पहुंचने के लिए ये कोई नई इच्छा नहीं है, पर इन लोकों में पहुंचने के लिए कोई भौतिक सुविधा नहीं, पर क्या चीज़ की आवश्यकता है, आध्यात्मिक तैयारी की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक तैयारी के द्वारा आप दूसरे लोकों में पहुंच सकते हो, कोई भौतिक प्रबंध के योजना के द्वारा नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है आगे शुक्रदेव गोस्वामी के द्वारा, इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है और तीन प्रकार के व्यक्ति वक्ता या उपदेशक जो प्रश्न पूछता है और जो सुनता है सभी शुद्ध हो जाते हैं। दूसरे शब्द में पिछले 8-9 श्लोकों के द्वारा एक ही विषय पर बल दिया जा रहा है, और वो विषय क्या है कि हमें रुचि लेनी चाहिए कृष्ण कथा में। कृष्ण कथा इतना लाभदारी है कि अगर कोई व्यक्ति उसे सुन भी ले तो भी उसको इसका लाभ पहुंचेगा। जैसे कि भागवतम के 6 स्कंद में अजामिल की कथा पढ़ते हो और उस कथा के दौरान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अगर अज्ञानता से भी कोई ले ले तो भी उसे इसका लाभ पहुंचेगा। तो जिस प्रकार गंगा के पानी में कोई भी स्नान करे उसे उसका लाभ पहुंचता है, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर भगवान वासुदेव की लीलाओं तथा गुणों के विषय में चर्चा करे उसे भी लाभ मिलेगा, जो सुना रहा है उसे भी लाभ पहुंचेगा, और जो सुन रहा है उसे भी लाभ पहुंचेगा। तो आज आवश्यकता क्या है कि इस प्रकार की चर्चा बढ़ाई जाए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तस्मात गुरुं प्रपदयते, कि यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त कैसे होता है? प्रमाणिक गुरु के द्वारा। प्रमाणिक गुरु और दूसरे गुरु में अंतर क्या है? असल में प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य में एक ही विषय पर बल दिया गया है। अंतर यह है, प्रमाणिक गुरु की इच्छा यह है कि शिष्य कृष्ण कथा में रुचि ले, और प्रमाणिक गुरु जो चर्चा भी करता है शास्त्र पर आधारित चर्चा ही करता है। और ऐसे तो देखा जाए समाज में अनेक व्यक्ति आज गुरु बने हुए हैं, अनेक व्यक्ति प्रचार करते हैं, पर अगर ध्यान से देखोगे इनका जो प्रचार है शास्त्रों पर आधारित नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। वो ज्ञान या उपदेश धर्म जो श्रुति और स्मृति पर आधारित नहीं हो उसके पालन से क्या होगा? बेचैनी, कंफ्यूजन। जैसे कि आज आप देखते हो समाज में अनेक व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं पर बहुत से कम प्रचार कर रहे हैं शास्त्र पर आधारित। और कई बार आपको सुनने में मिलता है, आप कहते हो ये धर्म ठीक है, कोई कहता ये धर्म ठीक है, हमें तो समझ नहीं आता कौन से धर्म को अपनाएं। लोग कहते ना, ये इसलिए है क्योंकि लोग श्रुति और स्मृति पर आधारित शिक्षा नहीं दे रहे। और रूपक गोस्वामी जी ने कहा था कि यही परिणाम होगा। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो केवल शास्त्र पर आधारित शिक्षा देता है, और शास्त्रों का निर्णय क्या है? हर व्यक्ति को भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। तो गुरु की भी वही इच्छा है। आप वामन देव और बाली महाराज की कथा में पढ़ते हो और देखते हो कि जब शुक्राचार्य को पता लगा कि भगवान अवतारित हुए वामन देव जी के रूप में, और उन्होंने उनके शिष्य ने ये कह दिया है कि वो उतना स्थान देंगे जहाँ के वो तीन कदम रख सकें, और इसके द्वारा उनके धनी शिष्य की सारी संपत्ति चले जाएगी, तो उन्होंने कहा अपने शिष्य से कि तुम उस वचन का पालन मत करना, कह देना जैसे एक मित्र किसी और मित्र से मखौल करता है तो मखौल कर रहे थे। पर बाली महाराज ने कहा कि पहाड़ों का बोझ उठा सकती है, सागर का बोझ उठा सकती है, पर झूठे व्यक्ति का बोझ नहीं उठा सकती। और बाली महाराज ने ये शुक्राचार्य की शिक्षा का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा वो अपने शिष्य को रोक रहे थे भगवान के शरणागत होने से। तो प्रमाणिक गुरु का फर्ज है शिष्य को प्रेरणा देना कि वो भगवान के शरणागत हो जाए। और उपदेश रमित के बिल्कुल पहले श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या गुण या तालीम होनी चाहिए प्रमाणिक गुरु की। कहते हैं वाच वेगम मनासा क्रोध वेगम जीव वेगम उदारोपस्थ वेगम। कहते हैं कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में ला सके उसी के पास ये अधिकार है शिष्य बनाने का। दूसरे शब्दों में प्रमाणिक गुरु के लिए प्रमाणिक गुरु से कहा जाता है जो कि वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, जो मन और इंद्रियों को वश में रख सकता है, और जो खुद गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। जैसे कि इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ये दिव्य ज्ञान जब गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है तो इसकी चर्चा से अत्यंत अधिक लाभ पहुंचता है। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करता है, और उनका जो उपदेश है वो निर्भर रहता है हर स्थिति में शास्त्रों पर आधारित। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार और जब वहाँ के कई संन्यास स्वामियों ने उनसे कहा, जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी का प्रचार उनके प्रचार से बिल्कुल जुदा है, तो वो घबरा गए। उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि आप जिस रूप से व्यवहार रख रहे हो, जो वस्त्र पहनते हो वगैरह, जो उपदेश दे रहे हो, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। तो आप भी हमारे जैसे सूट पैंट पहनना शुरू कर दो और छुरे कांटी से कांटे से वेस्टर्न स्टाइल में खाना शुरू कर दो वगैरह। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल घबराए नहीं, हालांकि उन्हें पहले साल अमेरिका जाके भी बहुत गंभीर संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी तपस्या का पालन, कठिनाइयों को उठाना पड़ा। तो प्रमाणिक गुरु देश देता है शास्त्रों पर आधारित, और उनकी रुचि है किसमें, कृष्ण कथा में। तो हमें प्रश्न और उत्तर पूछने चाहिए जे उस प्रकार के जिनके द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। और कृष्ण नाम, कृष्ण कथा में इतनी शक्ति है कि अगर कोई अज्ञान व्यक्ति भी इसे सुनेगा तो इसके द्वारा उसे केवल लाभ ही पहुंचेगा। तो हमारी असली रुचि होनी चाहिए कृष्ण कथा में। अब ये कृष्ण कथा के विषय में ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये इस विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के कार्यकलापों का संग्रह हमें प्राप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में। भागवतम में भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है, और जो भक्त हैं इन कार्यकलापों को सुनकर अधिक आनंद अनुभव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कुर्मा ब्राह्मण से कहा था कि हमें रोज क्या पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता, क्योंकि भागवतम और भागवत गीता अगर रोज सुनोगे तो उसके द्वारा हृदय की जो मैल है वो निकलेगी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है, नास्ता परेशु अभद्रेशु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नायस्तकी। शुक्रदेव गोस्वामी जी ने पिछले श्लोक में ये स्थापित किया है कि इस कलयुग की समस्या को हल करने के लिए क्या है, एक औषधि, कृष्ण कथा में रुचि लेना। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, अगर हम नस्तप्रेषु अवद्रेषु नियमित रूप से भागवतम को सुनेंगे तो इसका क्या लाभ होगा, हृदय की जो मैल है वो दूर होगी और भक्ति भावना हृदय में स्थापित होगी। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, चेत दर्पण मार्जनम, हरे नाम के उच्चारण से हृदय की जो मैल है दूर होगी। तो कृष्ण कथा में हमें रुचि लेनी है, और जब हम एक दूसरे को भी मिलें तो कृष्ण कथा की चर्चा होनी चाहिए। रूपक गोस्वामी जी उपदेशर में ग्रंथ में सबसे पहले श्लोक में तो ये स्थापित करते हैं कि प्रमाणिक गुरु में क्या गुण होने चाहिए। आगे रूपक गोस्वामी जी ये स्थापित करते हैं कि किस प्रकार भक्ति बढ़ सकती है और किस प्रकार भक्ति नष्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, अत्याहरा प्राय प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लोलियम च सद्वीर भक्ति विनश्यति। विनश्यति का अर्थ है नष्ट होना। तो रूपक गोस्वामी जी बता रहे हैं किस प्रकार हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और त्याहरा प्रयश प्रजल्प नियम प्रजल्प, प्रजल्प का अर्थ है वो चर्चा जिसकी भक्ति या कृष्ण से कोई संबंध नहीं हो, भौतिक चर्चा, ग्राम कथा। तो प्रजल्प के द्वारा भक्ति कमजोर हो जाती है, और प्रजल्प के नहीं करोगे तो क्या करोगे, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा के द्वारा जो भक्ति है वो मजबूत हो जाती है। तो शास्त्रों द्वारा हमें स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है किस प्रकार भक्ति बढ़ सकती है, किस प्रकार भक्ति नष्ट हो सकती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे थे परम भगवान के शरणगत होने के विषय में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उसको स्वीकार, उन कार्यों को स्वीकार करो जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो आज के श्लोक में और पिछले कई श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है उन कार्यों का जो कि भक्ति के लिए अनुकूल हो, और प्रजल्प भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो अक्सर हमारी आदत है प्रजल्प में जुड़ने की, और देखा जाता है कि हम बड़े उत्साहित होते हैं प्रजल्प इत्यादि चर्चा में, पर प्रजल्प की जो आदत है वो हमें त्यागनी चाहिए। प्रजल्प के द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन भी नष्ट होता है और दूसरे का भी। तो रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है प्रजल्प से हमें बचना है, और प्रजल्प से केवल जब बच पाओगे अगर आप कृष्ण कथा में रुचि लोगे। जीव का उपयोग तो करना है आपने, जैसे कि मन के विषय में कहा जाता है कि अगर मन में शुद्ध विचार रखोगे तो अशुद्ध विचारों के लिए स्थान नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ने सरल उदाहरण दिया कि अगर आप एक ग्लास को दूध से भर कर रखोगे तो फिर पानी या कुछ और डालने का स्थान नहीं रहेगा। और इसी प्रकार अगर मन के द्वारा सदा भगवान का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके नाम का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, उनके अनेक कार्यकलापों का चिंतन, गुणों का चिंतन करोगे तो मन में भौतिक विषय के लिए स्थान नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर हम जीभ के द्वारा कृष्ण कथा करेंगे तो फिर जीभ जो है प्रजल्प नहीं करेगी, भौतिक चर्चा नहीं करेगी। तो हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए, और भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के द्वारा। भगवान के जो कार्य हैं वो अनंत हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी जी ने भी कहा है कि हजारों जीवों से, रूप गोस्वामी कहते हैं एक जीव और दो कान आपका गुणगान करने के लिए बहुत कम है। एक एक जीव और दो कान, कहते हैं आपके इतने अनंत गुण हैं कि आपके सब गुणों की चर्चा करने के लिए हजारों जीवों की आवश्यकता है। तो जीव और खान, इनके द्वारा हमें कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा में रुचि लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान की अनेक लीलाओं की चर्चा है, और शुरू से अंत तक आप क्या देखते हो, शुरू से अंत तक देखते हो कि भगवान की जो लीलाएं हैं ये केवल सब आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं। इनकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति ना कभी कर पाया है ना कर पाएगा। जैसे कि जब भगवान ने अपने को प्रकट किया साधारण बच्चे के समान ही दिव्य रूप में, छोटे से थे, पूतना राक्षसी आई किस प्रकार से उसका वध किया, टिनावर्ता आए किस प्रकार उनका वध किया, किस प्रकार भगवान ने माता के कहने पर अपने मुंह को खोला, और जब मुंह खोला माता ने क्या देखा, पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को, किस प्रकार कुबेर के दो पुत्र जिन्हें श्राप मिला था नारद मुनि जी के द्वारा वृक्ष बनने का, कुबेर जो हैं देवताओं के खजांची हैं, और एक समय जब नारद मुनि जी गुजर कर आ रहे थे तो उन्होंने देखा मंदाकिनी नदी में ये दो पुत्र खेल रहे थे स्त्रियों के साथ, नंगे थे, बिल्कुल शराब के नशे में, जैसे वृक्ष नंगे होते हैं। तो नारद मुनि जी ने उनकी भलाई के लिए क्या किया, उन्हें श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओगे, पर कहाँ, दिल्ली या बॉम्बे में नहीं, वृक्ष बनोगे कहाँ, नानाज के आंगन में। वैसा श्राप तो शायद आपको भी बुरा नहीं लगे। तो और ये भी वर दिया साथ में कि देवताओं के 100 सालों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान जो है अपने भक्तों के वर को पूरा करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अनेक वर दे दिए थे, हिरण्यकशिपु ने अनेक वर प्राप्त कर लिए थे ब्रह्मा जी से, ना मेरी मृत्यु होगी ब्रह्मांड में, ना पृथ्वी में, ना सागर में, दिन में या रात में, ना किसी मनुष्य के द्वारा, ना हथियार के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा। और इन सब वरों को प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मण हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि अब उनकी मृत्यु नहीं होगी, जो उन्हें चाहिए था वो प्राप्त हो गया। तो भगवान ने अपने आप को नृसिंहदेव रूप के रूप में प्रकट किया, ब्रह्मा जी के सब वरों को रखते हुए जब भी हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो परम भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। तो भगवान को पता था कि नारद मुनि ने इन दो कुबेर के पुत्रों को ये वर दिया है कि देवताओं के 100 सालों के पश्चात उनका दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान ने जब अपने पिता के आंगन में वो थे तो इन दो पेड़ों को गिराया। जब ये दो पेड़ गिरे तो उनकी माता रसोई में थी, माता ने सुना ये इतनी भारी आवाज, तो वो आई, उन्होंने देखा ये दो पेड़ जो उनके आंगन में थे वो नीचे गिर गए। और जब ये पेड़ गिरे तो हल्के से उनके भगवान को छुआ नहीं। माता ने कहा क्या हमारा सौभाग्य है कि इन पेड़ों ने मेरे बेटे को, मेरा बेटा बच गया। और फिर उन्होंने पूछा कि ये पेड़ कैसे गिरे। जो दूसरे मित्र थे उन्होंने कहा कि इन दो पेड़ों को अपने बेटे ने, आपके बेटे ने गिराया है। तो माता को यह विश्वास ही नहीं हुआ। माता ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरा छोटा बेटा इन दो भारी पेड़ों को नीचे गिराए। और देखा जाए भौतिक दृष्टि से ये कार्य तो असंभव है किसी के लिए भी, पर भगवान की जो दिव्य कार्यकलाप हैं ये सब दिव्य हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो भगवान ने कैसे इन दो पेड़ों को गिराया, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया। जब यशोदा माता ने सुना था कि भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठाया तो वो विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, जरूर मेरे पति ने मदद की होगी ये पर्वत को उठाने में। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भगवान की लीलाओं और गुणों के विषय में हमें सुनना चाहिए और इनका ज्ञान हमें शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। भगवान के गुणों के विषय में ब्रह्मा जी हमें ज्ञान देते हैं। भगवान के अनेक गुणों में एक गुण यह है कि वो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य भी कर सकते हैं। आप और हम एक ही कार्य कर सकते हैं एक अंग के साथ, भगवान किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं अध्ययम पुराण पुरुषम नवयौनम च, आप हो सबसे प्राचीन पुरुष आदि पुरुष, पर आप दिखते हो कैसे, बिल्कुल एक युवक के समान। फिर एक स्थान में रहते हुए उनका प्रभाव है हर स्थान पर, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अच्युता, कभी भी वो गलती नहीं करते। आज भी हम उनके उपदेश गीता के रूप में पढ़ते हैं और ये उपदेश है कितना पुराना, 5000 साल पूर्व नहीं, सबसे पहले तो भगवान ने ज्ञान दिया था किसे, सूर्य के देवता विवासवान को। तो इस प्रकार भगवान के अनेक गुण हैं और भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आप अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हो। भगवान पुरुष रूप में अवतारित होते हैं, पशु के रूप में भी अवतारित होते हैं और एक्वेटिक्स जलचर के रूप में भी अवतारित होते हैं। उनके लिए कुछ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो भगवान की जो अनेक लीलाएं हैं इनका ज्ञान हम श्रीमद् भागवत में ही प्राप्त करते हैं। और कई बार जैसे भारत में आपको अनेक कथाएं सुनने में आती हैं, जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो अर्जुन उदास हो गए थे। अर्जुन ने फिर उन लीलाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर परम भगवान के सहयोग से वो उन कार्यों में सफल रहे। और इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। और फिर अर्जुन को क्या महसूस हुआ कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं। तो अगर हम कृष्ण कथा की चर्चा करेंगे, अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे, तो इसके द्वारा विष्णु स्मरण भी संभव हो पाएगा। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है अगर हम भक्ति योग के क्षेत्र के मार्ग में आगे बढ़ना चाहें। तो अंत में कहा गया है रूप गोस्वामी जी के द्वारा कि सारे जो नियम हैं इन सब उपदेशों का एक मूल उद्देश्य है, वो क्या है? सदा कृष्णा का स्मरण करना और कभी कृष्णा को भूलना नहीं। जब प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो अगर हम कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो ही विष्णु स्मरणम संभव होगा। अगर हम कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेंगे तो कृष्ण स्मरणम भी संभव नहीं होगा। इसलिए इन श्लोकों के द्वारा इस विषय पर बल दिया जा रहा है कि हमें वासुदेव कथा या कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। तो अभी हम भक्तों को क्या करना चाहिए? वैसे तो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं और वैसे तो हम कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं, पर हमारा अनुभव यह है कि जितनी मात्रा में रुचि लेनी चाहिए हम नहीं ले पाते। ये सच बात है हाँ। उसका एक कारण यह है कि हम इन ग्रंथों का को पढ़ते नहीं। हमें नियमित रूप से कम एक घंटा रोज लगाना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ने में। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान फिर ये देखते हैं कि हम उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इन ग्रंथों में है क्या? इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी या भगवान का उपदेश या उनके दिव्य कार्यकलापों का वर्णन, जैसे कि आप भगवतम के 10वें स्कंद में देखोगे। तो जब भगवान देखते हैं कि हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे समझने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसे बुद्धि देते हैं उन्हें समझने के लिए। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, अगर कोई प्रयास करता है मुझे समझने के लिए तो फिर मैं उसे बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। सर्वस्य चाहम हृदि सानिविष्टो मातः स्मृति ज्ञानम अपहानम च। जब माता यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, पहले असफल रही, दूसरी रस्सी जोड़ी वो भी संभव नहीं हो पाई, फिर भगवान ने देखा कि उनकी माता निराश हो रही हैं क्योंकि उनको बांध नहीं पा रही, फिर भगवान ने उन्हें बांधने दिया। तो उसी प्रकार जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इन्हें पढ़ने के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान हमें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उनको समझ। तो कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? हम सारे भाग, हमें प्रयास करना चाहिए आज से कि हम एक नई नई कथा को, एक कृष्ण मुख एक अध्याय को रोज पढ़ें और फिर प्रयास करें कि दिन में इस कथा की चर्चा भी करें किसी और के साथ। और जब हम एक दूसरे को मिलें तो इसी प्रकार की अगर कथा करें तो हर व्यक्ति के लिए लाभदारी है। तो कृष्ण कथा भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई क्रोधित रूप से भी उनकी चर्चा करे तो भी इसका लाभ पहुंचेगा, पर अगर कोई श्रद्धा से करे फिर उसे अधिक लाभ पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में कहते हैं जो भी व्यक्ति इस आंदोलन को सहयोग दे और जो भगवान के संदेश का प्रचार करे वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं गीता में, सब प्रकार के भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो कि मेरे उपदेश का प्रचार करता है। चैतन्य महाप्रभु जी एक समय हरिदास ठाकुर से मिले, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर से कहा, हरिदास इन यामनों और मलेच्छों की स्थिति देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार इनका उद्धार होगा। तो हरिदास ने क्या कहा, प्रभु चिंता ना करें, आप चिंता मत करो, हा राम बालिकाए नामा भासे, कि भगवान के नामों को लेने के द्वारा ये जो मलेच्छे हैं और यावन हैं इनका उद्धार होगा। तो प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा में भी आप देखते हो कि प्रहलाद महाराज यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार इन बद जीवों का उद्धार होगा। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि सोचे तो विमुखत चेत सिंधी अर्थ, जब मैं देखता हूं कि किस प्रकार ये बद जीव दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया, हमेशा प्रचार करने का प्रयास किया। हालांकि चारों तरफ से उनके पिता के प्रतिनिधि देख रहे थे कि प्रचार नहीं करे और कृष्ण भक्ति नहीं करे। तो इसीलिए इस श्लोक के इस तात्पर्य की समाप्ति पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये वासुदेव कथा से भरा हुआ है और जो भी व्यक्ति इसे सुने, इसकी चर्चा करे या सुनाए, तीनों को लाभ पहुंचेगा। और जो व्यक्ति इस संदेश का प्रचार करे, प्रचार करने से ही हमारे अशुद्ध विचार शुद्ध बन जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार पर अधिक बल दिया, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के वितरण पर अधिक बल दिया। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है, इन ग्रंथों में केवल कृष्ण कथा है और कृष्ण कथा में इतनी शक्ति है कि जो भी इसे पढ़ेगा, प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के विषय में कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी पढ़ ले और उसको समझ ले उसके अर्थ को, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। केवल एक श्लोक, प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को छू भी देगा तो उसे आध्यात्मिक लाभ पहुंचेगा। और अगर हम प्रयास करें तो अवश्य ही इन ग्रंथों का वितरण भी हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते, ये सब निर्भर है हमारे प्रयास पर। इस प्रयास से क्या संदेश मिल रहा है कि प्रभुपाद जी ने जो कहा कि इन ग्रंथों को बांटो, तो जो ग्रंथों को बांटता है, जो इन ग्रंथों को स्वीकार करता है उसका उद्धार होता है। इन ग्रंथों में क्या है, केवल कृष्ण कथा। तो अगर हम भी इस प्रकार से प्रयास करें, अभी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, अधिक संख्या में लोग आएंगे, और अगर हम प्रयास करें तो अवश्य ही लोग इन ग्रंथों को स्वीकार करेंगे। पर प्रयास करने का ये अर्थ नहीं कि हम केवल टेबल रखें, टेबल में किताबें रखें और वहां बैठे रहें, और अगर कोई आकर कोई पूछेगा हाँ जी दीजिए भगवद गीता तो हम फिर दिखाते हैं। प्रयास करने का अर्थ है जरा उत्साहित होकर लोग बद जीवों को आकर्षित करने का प्रयास करना। सच बात है, जैसे कि एक समय एक बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन में एक बहुत बड़ी दुकान है, इंटरनेशनल बुक हाउस, तो वहां मैंने 1975 में 76 में एक बहुत बड़ा डिस्प्ले का प्रबंध किया था प्रभुपाद जी के ग्रंथों का। पर एक महीने के बाद देखा कि इतने अधिक ग्रंथ नहीं बिके, तो मैंने प्रभुपाद जी से कहा कि एक महीने हमने विंडो डिस्प्ले रखा, बुक रैक रखा, पर इतने ज्यादा ग्रंथ नहीं बिके। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ बिकते हैं मेरे भक्तों के उत्साह के कारण, और दुकानों में सेल्समैन का उत्साह थोड़ी रहता है। तो ये प्रमाण है, आप देख सकते हो कि हमारे भक्त जब प्रयास करते हैं उत्साह के साथ ग्रंथों को बांटने के लिए, लोग ग्रंथों को लेते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति के आगे बढ़ने के लिए अनेक कार्यों में क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। तो हमें भक्ति का भक्ति सेवा करते हुए बड़ा उत्साहित रहना चाहिए, चाहे कोई भी सेवा हो। जब चैतन्य महाप्रभु जी अपने साथियों के साथ गुंडीचा मंदिर को साफ कर रहे थे, सारे भक्त बड़े उत्साहित थे, बड़े उत्साह के साथ हरे कृष्ण का मंत्र का जाप भी कर रहे थे और साथ साथ क्या कर रहे थे, सफाई भी कर रहे थे। तो हमें हरि नाम के प्रति उत्साहित रहना चाहिए, भागवतम गीता के समय उत्साहित रहना चाहिए, सेवा करते समय उत्साहित रहना चाहिए, और जब हम प्रचार करते हैं जब उत्साहित रहना चाहिए। अगर हम प्रचार करेंगे उत्साहित होते हुए तो इसके द्वारा हम दूसरों को भी आकर्षित कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भी इस संस्था के साथ जुड़े या जो व्यक्ति भी इस संदेश के प्रचार में सहयोग दे, वो सब इसका लाभ उठाएंगे। तो आज इस समाज में कृष्ण कथा की कमी है। सुखदेव गोस्वामी जी कह चुके हैं पिछले श्लोक में कि कलियुग की हर समस्या हल हो सकती है, कैसे, कृष्ण कथा के द्वारा, और हमारी सब हर प्रकार की आवश्यकता भी प्राप्त हो सकती है अब कृष्ण कथा कृष्ण सेवा के द्वारा। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं जल की प्राप्ति होती है, अन्न का उत्पादन होता है जल के द्वारा, वर्षा के द्वारा, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप धर्म के नियमों का पालन करो या यज्ञ करो, यज्ञ के बिना आवश्यकताओं की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है, कृष्ण कथा कृष्ण भावना की कमी है। तो हमें एक बड़ी गंभीरता के साथ इन श्लोकों के संदेश को स्वीकार करना चाहिए। ये पहला श्लोक नहीं है इस अध्याय का, असल में देखा जाए ये 16वां श्लोक है इस अध्याय का, और पहले श्लोक से 16वें श्लोक तक लगभग हर श्लोक का भाव एक ही है। वो भाव यह है कि हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए, और कृष्ण कथा का में इतनी शक्ति है कि हर व्यक्ति इसका लाभ उठाएगा, सुनने वाला, बोलने वाला और पूछने वाला। और भागवत में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अज्ञानता से भी भगवान के नामों को ले ले, अज्ञानता से भी सुन ले, जैसे कि विदेशों में हम इन ग्रंथों का वितरण करते हैं, भारत में तो हर व्यक्ति जानता है, लगभग हर व्यक्ति जो लेता है इन ग्रंथों को, कि ये दिव्य ज्ञान है और इसके द्वारा हमें लाभ पहुंचेगा, ज्ञात सुकृति। पर विदेशों में तो लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, कईयों को गीता क्या है वो भी नहीं पता, और जब हमारे भक्त भी जब इन ग्रंथों का वितरण करते हैं विदेशों में, हमेशा ये नहीं कहते ये धार्मिक ग्रंथ हैं, क्योंकि उन्हें जैसे कहा कह दो कि ग्रंथ धार्मिक हैं और ये सब हैं ईसाई और मुसलमान, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो बाइबल है हमारे पास। पर जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं स्वीकार करते हैं तो इसके द्वारा उनका लाभ होता है। तो इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक को भी समझ ले तो वो अपने जीवन को सुधार सकेगा। और ये देखा गया है कई बार लोगों ने इन ग्रंथों को लिया है बिना जाने कि ये धार्मिक ज्ञान है, पर जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें इतना आनंद अनुभव होता है, उनका उनकी अज्ञानता दूर होती है और इसके द्वारा वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो ज्ञात सुकृति अज्ञात सुकृति, कई कार्य हम करते हैं ये जानते हुए कि इसके बदले में हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, पर कई कार्य हम करते हैं अज्ञात सुकृति जाने बिना। पर कृष्ण शक्ति कृष्ण सेवा में इतनी शक्ति है कि अज्ञान से भी अगर हम कुछ सेवा करें तो उसका हमें लाभ पहुंचेगा। प्रभुपाद जी इस विषय में एक उदाहरण देते थे कि एक गांव था जिसमें बिजली नहीं थी और एक राधा कृष्ण का मंदिर था, तो इस गांव में एक दिए के द्वारा लोगों को भगवान का दर्शन मिल रहा था, और वो दिया जो था बुझने वाला था, तो एक चूहा वहां गई ये सोचते हुए कि ये मक्खन है चखने के लिए, उसके द्वारा दिया जो बुझने वाला था थोड़ा तेज हो गया, जिसके द्वारा लोगों को राधा कृष्ण के विग्रह का ज्यादा अच्छी तरह दर्शन मिला, और केवल ये इस कार्य के द्वारा उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई और मुक्ति प्राप्त हुई। तो कृष्ण सेवा में इतनी शक्ति है। तो हम सबका कार्य, हम सबका असली उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति में जुड़ना और दूसरों को जोड़ना, और हमें ये बुद्धि लगाते रहनी चाहिए कि किस प्रकार हम सबको सेवा में जोड़ सकें। और कोई व्यक्ति अगर सेवा में जुड़ जाए तो यह है मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य। तो संक्षेप में इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के नामों में, लीलाओं में, गुणों में इतनी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ेगा उसे लाभ पहुंचेगा। और इस श्लोक में कृष्ण कथा की तुलना की गई है गंगा के साथ। गंगा जो है सबको पवित्र बना देती है। तो उसी प्रकार चाहे कोई कृष्णा भगवान के भविष्य में सुने, पूछे या उत्तर दे, हर व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचेगा। हरे कृष्ण।